نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے آخری سیشن کا آغاز کریں گے. تیسویں پارے کا لاسٹ روپ ہے اور سورت البینہ سے شروع کریں گے. یہ آخری کہتے کہتے میرے دل میں ایک دم احساس آیا کہ ہر چیز اپنے وقت پہ آ کے گزری جاتی ہے. ہم نہیں جانتے ہم اس کے بعد دوبارہ قرآن پاک پڑھ سکیں گے کہ نہیں، لیکن خیر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا، بس میں اس کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جتنی شکر گزاری محسوس کروں، جتنا اس کا احسان محسوس کر سکے بندہ کرے، کہ اگر آج ہم اس لیول پہ ہیں تو اگلے ہی ہفتے سے ہم ایک اور قرآن پاک بھی شروع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے ان سارے مواقع کا حق ادا کر سکیں. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاتهم البینۃ. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. وذالک دین القیمہ. یہی نہایت درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اللہم لا تجلنا منہم، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک لمن خشی ربا. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. سورۃ بینہ لفظ کتنا خوبصورت ہے، دلیل روشن. اسلام بینہ کا دین ہے. سورۃ الانفال میں بھی آتا ہے کہ جو جیے وہ دلیل پہ جیے اور جو مرے وہ دلیل پہ مرے. ہمارے دین میں دلیل کی بہت ساری مختلف قسمیں ہیں. یہاں اگر آپ نے غور کیا تو یہاں البینہ سے کون مراد ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بچہ دنیا میں بن باپ کے بھی پیدا کیوں نہ ہو جائے، یا جس کے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا انتقال بھی ہو جائے، لیکن اللہ اس بچے کو دنیا اور آخرت میں سرداری کے منصب پہ فائز کر سکتا ہے. اور بہت سارے دلائل تھے آپ کی صورت میں جو اس وقت نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس پوری صورت میں رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی کہ دنیا کے لوگ، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے اس سے ان کا نکلنا ممکن ہی نہ تھا کہ ایسا رسول بھیجا جائے جس کا خود اپنا وجود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کریں، جو باطل کی تمام آمیزشوں سے پاک ہو، جن سے پچھلی آسمانی کتابوں کا آلودہ کر دیا گیا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں کتنا پلیوشن شامل کر دیا گیا جب آپ آئے، اور یہ جتنا ریئیکشن ہوا نا قرآن کے نازل ہونے میں، خاص طور پہ مدینہ میں اور پھر مکہ میں پہلے سے، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ ان علائشوں کو دور کر رہے تھے جو ان کے ربیوں اور ان کے علماء کرام نے شامل کر لی تھیں. آج بھی دیکھ لیجئے، انسانوں کو دیکھیں تو جتنا بگاڑ ہمیں دکھتا ہے، خاص طور پہ امت مسلمہ میں بھی، اس وقت بھی استادوں کی بہت ضرورت ہے جو لوگوں کو سکھائیں بتائیں. کتابوں سے بھی بندہ سیکھتا ہے، بولی ہوئی باتوں سے بھی انسان سیکھتا ہے، लेकिन चलते फिरते उस्ताद के वजूद की सूरत में इंसान के पास एक दलील होती है। किस बात की दलील? कि आज के दौर में भी कोई दीन पे अमल कर सकता है। आप देखिए कि दीन सिखाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। एक बंदा बात करता है और पूरी दुनिया में आप उसको सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कहीं से भी। इसमें भी बहुत सारे हालात खुल जाते हैं, क्योंकि जो इंसान की बात होती है ना, असल में वो उसके किरदार और उसके अमल का नतीजा होती है। उसे बात ही नहीं निकलती जब तक अमल ना हो। ढीली बातें ढीला अमल, मजबूत बात मजबूत अमल। लेकिन बस दफ़ा मैंने देखा है कि जब भी इंसान इस तरह के मीडियम्स, यानी जैसे इस वक्त भी आप में से बहुत सारे लोग पेलटॉक के थ्रू सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स, कई जगह पे कोर्सेज चल रहे हैं जो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स के साथ और लाइव अटेंडेंट्स के साथ होते हैं, मैं अक्सर फ़र्क महसूस करती हूँ। एक जगह बैठ के सीखने वाले जिनके पास उस्ताद हो, और वो जिन्होंने घर बैठ के सुना। बस जगह तो फ़र्क नहीं होता, क्योंकि सीखने वाले जो होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं और वो उस चीज़ को अपने ऊपर लाते हैं। लेकिन अमूमन जो फ़र्क देखा गया है वो यही देखा गया है कि सब्र नहीं आता इंसान की ज़िंदगी में जब तक कि वो उस्ताद के सामने ना बैठे। हिल नहीं सकते, फ़ोन नहीं सुन सकते, सीधा बैठना है, टेक नहीं लगानी, बीच में उठ नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें फिर एक अमली चीज़ बनती हैं जब हम किसी को अमली बातें सुनाते हैं। जैसे आज सुबह हमारी एक शेयरिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह तजलियात नबूवत पढ़ाने के दौरान कल से लेके आज की कुछ शेयरिंग की। अब वो इतनी प्रैक्टिकल और इतनी नेचुरल थी कि जो मेरे साथ जहाँ भी स्टूडेंट थी और जो ओस्लो से सुन रहे थे, फिर उन्होंने बाद में शेयरिंग की, हमने बहुत इन्जॉय किया। और उसमें उनका भी यही था कि अगर प्रैक्टिकली ये कर सकते हैं ऐसे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम सब ने सीखा इससे कि जब एक बंदा ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो दुआ कीजिए कि हम सब हकीकत में ऐसे बामल हो जाएं कि हम अपने पीछे वालों के लिए दलीलें बन जाएं, कि ये नहीं मान सकते कि आज के दौर में अमल नहीं हो सकता और आज के दौर में ये मुमकिन नहीं। इसी तरह की कोशिशें उस दौर में भी थीं और आज भी इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको हिदायत के रास्ते पे ज़िंदगी के आखिरी दिन तक कायम रखे। कभी हम इससे ना हटें जो नस्बत जुड़ गई अल्लाह के दीन के साथ, जो हमारी मौत के बाद भी ना टूटे। कहाँ ज़िंदगी में टूटे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि घर बनता है और टूट जाता है तो वो लड़कियाँ फिर मुंह नहीं दिखाती लोगों को, कभी शर्म, कभी कुछ, कभी गिल्ट, कभी नाकदरी का एहसास। हालात जैसे भी हों फिर गुजारा कर देते हैं साथ ही लोग के, कोई बात नहीं अभी ख़त्म। और एक घर टूटता है तो कितने घरों में शोर उठता है। दीन के साथ जब हमारी नस्बतें जुड़ जाती हैं तो बस इसी में ही खैर है, बस चुप करके अब बैठे रहें। हमारी एक सिस्टर है बहुत अच्छी हौसलों में, फरहाना उनका नाम है, तो उनकी सारी बातों में एक बात हमेशा ही होती है शेयरिंग में कि अल्लाह मुझे जोड़े रखना, मुझे तोड़ना नहीं, मेरे दिल में शक ना आए, मैं जो भी करती हूँ टूटा फूटा। आज भी सुबह बहुत रोई मिलके वो कि मैं इतने साल से साथ हूँ और इस तरह से मैं महसूस करती हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि बस मेरी एक ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे इस काम से हटाना ना, मुझसे अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा, ठीक नहीं, हक नहीं, जो मर्जी करा, लेकिन मेरा नाम ना हटाना इधर से, मेरे दिल में कभी शक ना इस दावत से। और अल्हम्दुलिल्लाह उनका दिल इस चीज़ पे मुतमईन है कि जो काम जिस तरीके से जिन लोगों के साथ वो कर रही हैं वो ठीक रास्ते पे कर रहे हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें हम सबको जमा के रखती हैं। दूसरों की बातें बाज़ दफ़ा इंसान के अपने अंदर एक नया जोश और एक जज्बा पैदा करती हैं। अगली सूरत है ज़िलज़ाल, क़यामत के झटकों की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा वख़रजतिल अर्ध अस्क़ालहा वक़ाला लिंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बक अवहा लहा। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी, और इंसान कहेगा कि इसको क्या हो रहा है। इस रोज़ वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी, क्योंकि तेरे रब ने इसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। इस रोज़ लोग मुतफरिक हालत में पलटेंगे ताकि इनके आमाल उनको दिखाए जाएं। फ़मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फिर जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा, और जिसने ज़रा बराबर बदी की होगी वो इसको भी देख लेगा। ये है क़यामत का ज़लज़ला। अंदर की चीजें बाहर और बाहर की अंदर आ जाएंगी। नीयतें बाहर दिख रही होंगी, अमल छुप जाएंगे। जाहिर बाहर की जिंदगी में हम अपने अमल देखते हैं, लोग भी देखते हैं। जैसे इस वक्त आप मेरा पढ़ाना देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं आपका पढ़ना देख रही हूँ कि आप कितने शौक से पढ़ने आए हैं। कयामत के दिन मेरी नीयत बाहर आ जाएगी, मेरे लफ्ज दब जाएंगे। इसी तरह आपके कान दब जाएंगे और आपकी नीयत खुल जाएगी। तो फिर किसकी इस्लाह की ज़रूरत है? नीयतों की इस्लाह की ज़रूरत है। तलपट हो जाएगा इंसान, बड़े बड़े गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, छोटी छोटी नेकियां, बड़ी बड़ी नेकियां। छोटी छोटी नेकियों को देखने का अगर शौक है, तो छोटे छोटे गुनाहों को देखने के लिए भी तैयार हो। ये सूरत हमें बताती है कि कभी भी अपने किसी गुनाह को छोटा ना जानो और अपनी किसी नेकी को हकीर ना जानो, क्योंकि कयामत का झटका सब एक जैसा कर देगा। अल्लाह ताला हमें आज इसकी फिक्र लगा दे। आप देखिए, कुछ चीज़ें जो हम जाहिर में लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे अपने लिए होती हैं। लोगों को दिखाई जाने वाली चीज़ें साफ़ सुथरी, सजी संवरी, खूबसूरत, ऑर्गेनाइज, और अपने लिए जो कहते छोड़ो खैर है। आप सोचे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए दुनिया में, जो चीज़ हमारी लोगों के सामने वो गंदी मंदी ख़राब हालत में दिखने लगे, और जो चीज़ हमारे अपने लिए अंदर हैं वो साफ़ हो जाए, तो कितनी शर्म आए हमें। तो कल की शर्म से आज ही बंदा बच जाए और अपनी इस्लाह कर ले। बस मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अपना घर साफ़ करें आप बाहर से, और बाकी चीज़ें छुपा दीजिए कोने खुदरे, सोच के साथ कि इधर तो किसी ने जाना नहीं। ऑपोजिट हो जाए, कोई ऐसे हालात वक्त पे बन जाएं कि जो जगह आपने साफ़ की उसमें आपको रहना पड़े, और जो बिखरी हुई, ख़राब, गंदी, बदबूदार, ताफुन वाली जगह, वहाँ आपको अपने मेहमान को ठहराना पड़ जाए, तो कैसा लगेगा? दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं इस बात को समझने के लिए कि जिस तरह बाहर की फ़िक्र करते हो, इस तरह अंदर की भी फ़िक्र करो। अगली सूरत आदियात है। अल्लाह के रास्ते में चलने की नहीं, हांपने की दावत दे रही है। चलते चलते हांपने लग जाओ, फिर भी काम ना छोड़ो, और तुम जितना भागोगे वक्त के साथ तुम्हारी उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं कि जब कोई बंदा शुरू शुरू में चलना शुरू करता है तो चल ही नहीं सकता, और इसका ऑपोजिट भी होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आगे से आगे बढ़ाने वाला बनाए, ना कि हम कम हो जाएं। बस दफ़ा हम बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए फिर आसानियाँ कर देता है। आइए सूरत देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलादियाति दबहन फलमूरियाति कदहन फलमुगीराति सुबहा فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ। कसम इन घोड़ों की जो फुनकारे मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों से चिंगारियां उछाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर इस मौके पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह को इनके एक एक कदम पे प्यार आ रहा है। सारी बातों का जवाब हकीकत यह कि इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। शर्मिंदा करने वाली बात है, इंसान शर्म से झुक जाए, क्योंकि अल्लाह ताला जो बात कहेंगे वो कभी भी कम नहीं हो सकती, और खुद इस पर गवाह है। और वो मालो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुबतला है, तो क्या वो इस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ दफन है इसे निकाल लिया जाएगा? सोचिए, और सीनों में जो कुछ छुपा हुआ है इसे बरामद करके इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िल खबीर। यकीनन इनका रब उस रोज़ इनसे खूब बाखबर होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें अपने सामने शर्मिंदा ना करे, रुसवा ना करे। किस तरह लोग लड़ाइयों में घुसे रहते थे, बेमकसद ज़िंदगी बसर करते थे, दुनिया में अपने आप को लेके चलते थे। अल्लाह ताला यहाँ घोड़ों की मिसालें दे के बताता है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की शान देखो, कि उस घोड़े के कदमों पे अल्लाह को प्यार आ रहा है। तो सोचिए घोड़े पे बैठे हुए शख्स की क्या शान होगी, वो तो फिर जानवर है, मजबूर है, कुल है। और इंसान तो अपनी मर्ज़ी से घर से निकला, अपनी मर्ज़ी से कुर्बानियाँ देते हुए आगे बढ़ा, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستوں میں اسی طرح نکلنے والے بن جائیں، اور مال اور دولت کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے کھرچ کے نکال دے، اور اس کی جگہ قرآن اور اپنے دین کی محبت ڈال لے. سورة القارية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية. عظيم حادثة. اور کیا ہے وہ عظيم حادثة؟ تم کیا جانو کہ وہ عظيم حادثة کیا ہے؟ خود ہی بتا دیئے کہ تم نہیں جانو تو پھر کیسے انسان جانے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لوگو، قیامت ایک بہت بڑا حادثہ ہے جو تم سب کے سامنے ہونے والا ہے. وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے ان کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. القاریہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. قیامت، آخرت، چکا دینے والی، عظیم حادثہ، ایکسیڈنٹ، بریکنگ نیوز. لوگ گھبرا رہے ہیں، ادھر سے ادھر پتنگوں کی طرح پھر رہے ہیں. پہاڑ جو آج جمے ہوئے ہیں، کل ان کی بندش ختم ہوگی، تھنکے ہوئے ان کی طرح ہو جائیں گے. اور لوگوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ کی عدالت قائم ہوگی. نیکی یا بدی، دیٹس اٹ. یا اچھا انجام یا برا، یا آگ یا جنت، کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ بس وہ کام کیجیے. فی عشت الرادیہ، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. چاہتے ہیں نا عشت الرادیہ، تو پھر اس دنیا میں اللہ کی پسند سے زندگی بسر کریں. دیکھیے دو باتیں ہیں، وہاں اس کو اپنی چاہی زندگی ملے گی جو یہاں رب چاہی زندگی پسند کرے گا. یہ دنیا رب چاہی تو وہ زندگی، وہ دنیا من چاہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں یہ وعدہ کیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یا دنیا کے لیے نہیں کہا کہ تمہیں وہاں بتا تیری رضا کیا ہے. یہ دنیا رب کی مرضی کی لے لیجئے خوشی سے، روتے ہوئے نہیں، دھوتے ہوئے نہیں، تڑپتے ہوئے نہیں، خوشی 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 بس. تو پھر وہاں پھر آپ اپنا اجر سمیٹیے گا، دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں گے تو آپ کو نہیں ختم ہوگا وہ اجر. اور اگر نہیں کر سکتے صبر تو پھر امہ ہاویہ، پھر اس کی ماں ہاویہ. ہوا سے، اونچی جگہ سے نیچی جگہ گرنا، اور ہاویہ وہ گہرا گڑا جس میں کوئی چیز گرے. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام. خواہشوں میں اڑنے والے اس میں گریں گے، گہرائی کی طرف اشارہ. ماں کی گود بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے نا، اس طرح آخرت محل جہنم کے لیے، جہنم کے لیے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور کھائی، اور وہ بھی آگ سے بھری ہوئی. کیسی گود ہے، کیسی ماں ہے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حوث نہ لگائے دنیا کی کہ ہم آخرت میں جا کے حاویہ میں گرے. سورۃ تکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. جھوٹ ہے کہ سچ؟ جھوٹ ہو نہیں سکتا، سچی ذات کی بات ہے. یہاں تک اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو، یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو. خواہش ہی نہیں ختم ہوتی. الماریوں کا اللہ کے حکم سے سائز ہی نہیں چھوٹا ہوتا. اٹھایا جائے نہ جائے چیزیں، پھر بھی لے لے کے رکھی رکھتے ہو. سنبھالا جائے نہ جائے، یاد رہے نہ رہے، گنا جائے نہ جائے، پہنا جائے نہ جائے. بعض لوگوں کو اتنی بری عادت ہوتی ہے جمع کرنے کی، اللہ کی پناہ، پہنتے کوئی نہیں، استعمال کوئی نہیں کرتے، حرص اتنی ہے کہ اور بھی لے کے رکھ لو. صرف سجانے کا شوق، صرف سنوارنے کا شوق. اس طریقے سے وہ اپنی چیزوں کو دل سے لگائے رکھتے ہیں، زیور لے لے کے پھرتے ہیں، ایک دن نہیں پہنتے، صرف ایک دن دو دن شوق، بعد میں بینکوں میں. شادیوں کے جوڑے تین تین چار چار لاکھ روپے کے، اور بعد میں بیکار. لیکن ہرس دیکھیے ذرا، کوئی کہہ دے نہ بناؤ تو لڑنے کو پڑیں گے، کسی کا پہن لو تو ایسے لگے گا کوئی بڑی بدشگونی کی بات کر دی. چیزیں ہوں دنیا کی تو پھر استعمال بھی کیجئے، پھر مزہ ہے. اپنے لیے پہن لیں، گھر والوں کے لیے پہن لیں، घर में इतना सामान ना हो कि आपके रहने की जगह ही ना रहे। और अक्सर आप देखिए कि हमारा जो मेस होता है वो गंद नहीं होता, कूड़ा करकट नहीं होता, वो दुनिया होती है, हद से बड़ी हुई दुनिया। तो नियत करते आइए, अपने घर की एक एक चीज़ को देखिए जो भी आपके जहन में आए इस वक्त या बाद में, और सोचिए कि मेरे पास कितने बेड सेट हैं, मेरे पास कितने बर्तन, कितने ग्लास, मैंने नहीं इस्तेमाल करनी, मैंने और नहीं खरीदनी। और अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की शान देखिए कि जब अल्लाह ताला बंदे को इन चीज़ों से बेनियाज करता है तो ज़िंदगी कितनी आसान होती है। हर दिन अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, कुछ कमी नहीं है। लेकिन अगर अपनी ज़ात से पूछें, मुसलसल ट्रैवलिंग रहती है। अभी रिसेंटली एक छोटा सा ट्रैवल किया, मैं हंस रही थी कल भी अपने साथियों के साथ, कभी नॉर्वे, कभी यूके, कभी इधर कभी उधर, दुनिया के खाते हैं चलते रहते हैं। तीन चीज़ें निकली मेरे पास अपनी ज़ाती ज़िंदगी की, दो प्लेटें जो आज से शायद 4 या 5 साल पहले दुबई गई तो अच्छी लगी तो खुद अपने शौक से ली, दो छोटी बोल, एक डोंगा और एक उसी के साथ मैचिंग की छोटी डिश, ये भी तभी ली थी, याद आ रहा है। दो मग थे जिसमें चाय या कॉफ़ी गर्म रहती है, आज से शायद 3 साल पहले मैं किसी जगह थी दावा ट्रिप में तो होस्ट ने ज़बरदस्ती दे दी कि आप सफ़र में रखें और इसको फिर इस्तेमाल करें, और एक ट्रे और एक प्रेशर कुकर। ये थी मेरी ज़ाती दुनिया मेरे किचन की जो मेरे घर से निकली, उसमें सिर्फ मैंने प्रेशर कुकर लिया कि अब कुछ दिन लंदन का इरादा है तो प्रेशर कुकर ज़रूरी था, फिर मंगवाना भी मुश्किल लगता है। मैं सिर्फ अपने साथ वही लेके आई, दो प्लेटें एक साथी को दे दी कि रखना मुझे याद करना, मग एक को दे दिए, साथ ट्रे दे दिए, और वो तीन चीज़ यानी तीन चार चीज़ें सबको बांट बूंट के। पिछले साल पाकिस्तान गई, शौक से 3-4 बेड सेट बनवाए, साथ सिर्फ मेरे हाले दो ही आए या उसमें से भी कमी बेशी, दैट्स इट। और क्या ख्याल है, कुछ नहीं, आप जाके तो देखें, आप तस्वीरों में मेरा घर देखें, आपको लगेगा शायद कोई ये बहुत ही खूबसूरत होटल का रिजॉर्ट है, सादा, हम रंग, कुछ गंदगी नहीं, कुछ नहीं, लंबी चौड़ी कहानियां ही नहीं। किसके पास वक्त है कि इन चीज़ों को संभालता फिरे, बोरे बना बना के हम अपनी ज़िंदगी को बोरियत में मुब्तला कर लेते हैं। मुझे किसी की बात नहीं भूलती, मुझे यकीन करें जुनून की हद तक शौक था घर को सजाने का, चीज़ें रखने का। अपने कपड़े मैं इस तरह रखती थी शादी से पहले कि मेरी वालदा मेरे कपड़े अलमारी में नहीं रख सकती थी, कहती थी तुम्हें पसंद नहीं आता, स्त्रियां करवा देती थी मासियों से, सब कुछ कर करा देना, अलमारी में मैंने खुद रखना, क्योंकि मैं कहती थी नहीं आप किनारे इस तरफ रखते हैं, मैं पिछली तरफ करती हूँ, पीछे से मेरा कपड़ा एक ही लगता है, उसी के अंदर दुपट्टा, उसी के अंदर बाकी चीज़ें करके सिर्फ आपको एक दिखेगा। कि मेरी भाभी मेरा मजाक उड़ाती थी, कहती थी भाजी ये चीज़ें आपकी खिदमत के लिए हैं, आप इनकी खिदमत के लिए नहीं हैं, आप तो कपड़ों की इतनी खिदमत करती हैं, क्या मजाल है किसी से धुलवा लो या इस्त्री कराओ। और ये वो दौर था कि जब कलफ लगती थी कपड़ों को, इस्त्रियाँ करने, धोने, अकड़ने, रातें खड़े हो के, फिर पहन के एक मुसीबत जान पे पड़ जाती थी कि कपड़ा पहनना हो, कहीं चले गए आते ही सबसे पहले कपड़े लटकाओ, हर वक्त एक ही सोच। जब इस गुलामी से आज़ाद हुए अभी भी कोई बुरा नहीं पहनते, लेकिन मैंने बिल्कुल इस्त्री वाले कलफ वाले कपड़े छोड़े हुए मुद्दत हुई, शायद ही कभी कपड़े इस्त्री करने की नौबत आए, शौक में अपने शौहर के करती हूँ, अपने नहीं दिल करता करने को। तो बात यह है कि ज़िंदगी को हल्का करेंगे ना तो भागने के लिए वक्त होगा। हम कितना करना चाहते हैं अल्लाह के लिए सफ़र, कितना कुछ करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं पाते कभी, आपने सोचा? पाँव की रुकावटें, ये दुनिया है, ये हिजरत किसको बुरी लगती है और अच्छी लगती है कि चलो मज़े से एक जगह नहीं तो दूसरी, लेकिन ये पाँव की बेड़ियाँ घर है, कौन बेचे कौन रखे। सोचे तो सही ज़रा, अगर हमें एक हफ्ते के नोटिस पे हिजरत करनी पड़ जाए, क्या बेचेंगे और कहाँ गैरेज सेल लगाएंगे और कहाँ उनको फेंक फेंक के आएंगे, और फिर आगे आके फिर हमें इतना भी चाहिए। तो हल्का रखिए खुद को, जिनको भागना होता है ना वो अपने आप को हल्का रखते हैं। दो सूटकेसों से भरने नहीं देती मैं सामान, अल्लाह के हुक्म से ट्रैवल जब भी करते हैं 2 सूटकेस पर हेड होते हैं। पिछले कई सालों से अमेरिका से चलने से लेके आज तक वही चल रहे हैं, कमी बेशी होती रहती है, हम इंसान हैं, लेकिन दिमाग और दिल में नहीं रखा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरे से ज़्यादा किसी और को इसकी ज़रूरत होगी, और ये भी नहीं कि कुछ नहीं, और ज़्यादा चीज़ें, जितना आप अपने दिल से इन चीज़ों को निकालते हैं वल्लाह ही आपके हाथों में हर वक्त नई चीज़ें होती हैं। खुद तो मैं सोच नहीं सकती जो चीज़ें मेरे पास होती हैं कि मैं कभी ये चीज़ ले सकती हूँ अपने लिए, जान पे पड़ जाती है। अगर मुझे अपनी ज़ात पे कोई 10-15 डॉलर या पाउंड की चीज़ लेनी पड़े, मैं तो नहीं ले सकती। ये अलग बात है कोई माँ बहन मोहब्बत में चाहे मुझे चास की ले दे और उनके दिल के लिए मुझे पहननी ओढ़नी पड़ जाए, मैं तो नहीं ले सकती। हाँ किसी और काम में देना है तो 100 दफ़ा दो, उसमें गिनने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस कसरत से निकाल दे। आप इसके लिए हज करें, उमरे करें, दुआएं करें, नफिल पढ़ें रातों को कि अल्लाह मेरे दिल से ये चीज़ें निकाल। आप देखिएगा सुख का सांस होगा, जैसे जिस्म में कभी ज़्यादा हो जाती है ना कोई चीज़, फिर जिस्म से निकालते हैं, पेट भर जाता है, फट जाता है, फटने वाला है, फिर पानी निकलवाते हैं, कभी ब्लड प्रेशर हाई। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये दिल की बीमारी है ना, तो ये दुनिया का कोलेस्ट्रॉल है, वही नसीब का जो है। और आप देखें कि अब थोड़ा होगा ना तो हमेशा नया होगा। बस अगर मैंने कहा कि वो 3 बर्तन मैंने अपने दे दिए, तो क्या भला मैं वो 3 अब इधर नहीं लूंगी? फिर नए, फिर घर में नयापन लगेगा। हम जहेज की चीज़ें ही ले लेके फिरते रहते हैं, सारी ज़िंदगी पेठियों में माँ ने भरी होती हैं कि मैं अपनी बेटी को जहेज में दूंगी। बेटी कहाँ लेगी? फिर कहते नहीं बहू को दूंगी। वो शर्म में ले लेती है अम्मा से कि सास को क्या कहूँ, और बाद में कई साल बाद देखेंगे तो किसी कोने में से निकलेंगे, फिर हम रोते हैं, कदर नहीं करती मेरी चीज़ों की। तो ज़िंदगी को हकीकत बनाएं, खेल ना समझें। आगे बहुत कुछ मिलना है आपको इंशाल्लाह, अल्लाह ने आपके लिए बहुत कुछ तैयार किया हुआ है। ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा, फिर सुन लो कि हरगिज नहीं, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा, हरगिज नहीं, अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के इंजाम को जानते होते तो तुम्हारा ये तर्ज अमल ना होता। तुम दोजख देख कर रहोगे, फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। उस रोज़ फिर ज़रूर तुमसे नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। बस इसको हाईलाइट कर लें। अल्लाह नहीं मना करता, पहनने ओढ़ें, खाएं पिएं, हज़ारों लगाएं, अल्लाह ने हलाल से दिए कर लें, लेकिन पूछा जाएगा। देखिए दो लफ्ज़ लिख लें, एक है हिसाब और एक है अजाब, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अल्लाह ना करे कि अजाब हो, हिसाब होगा, हिसाब के बाद माफ़ी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, जाओ। या ऐसे जैसे एयरपोर्ट पे खड़े हैं ना, लाइन में लगे हैं, वो तोल रहे हैं आपकी चीज़ें, ये कम है, ये ज़्यादा है, सजा नहीं देते आपको, लेकिन एक अजाब ही लगता है ना उस वक्त, सामान खुलना और निकलना और रुसवाई और थकन और तकलीफ, काफ़ी आधे घंटे की मगजमारी के बाद कहते हैं जाओ, ये है हिसाब। और अजाब क्या है कि उसके बाद आपको पकड़ के जेल में डाल दें या आपको डिपोर्ट कर दें क्योंकि कोई गलत चीज़ निकल आई। तो यहाँ के भारी सोफे वहाँ जाके नामे अमाल में वजन पैदा करेंगे, फिर बंदा कहेगा हाय हल्के ही होते तो अच्छा था। सूरतुल असर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر। ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत खसारे में है सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। यह है ज़िंदगी का खुलासा, बतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र। 4 काम है नुकसान से नफ़े में बदलने वाले, आमनु, आमिल सालेहात, और तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र। अल्लाह ताला हमें इन 4ों की तौफीक दे। मुकम्मल सूरत है, सहाबा कराम कहते हैं अगर कुछ ना और नाजिल होता, सिर्फ ये एक सूरत नाजिल हो जाती तो इंसानों की हिदायत के लिए काफ़ी थी। जामे मुख्तसर बेनज़ीर जचे तुल अल्फाज, एक दुनिया भर दी इसमें, इसको लिखने के लिए शायद एक पूरी किताब लिखी जाए। इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है, उसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा है? इमाम शाफी का कौल है कि अगर लोग इस सूरत पर ही गौर करते या करें तो इनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। आपस में मिलते तो दूसरे को जुदा ना होते उस वक़्त जब तक एक दूसरे को सूरत असर ना सुनाते। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन हुसैन की रिवायत है तबरानी में। तो इस पे गौर व फिक्र इंसान को दुनिया की चीज़ों से बेनियाज करता है। सूरत अल हुमज़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालं व अद्दद। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह लोगों पर तान और पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर है यानी आदी है। जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा। देखिए, माल कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जमा करना और गिन गिन के रखना, 9 और 99 का चक्कर, ये बुरा है। अब कितना हो गया, अब कहाँ पहुंच गया, जिस दिन आप पैसे गिन लेंगे ना, उस दिन आपका दिल तंग पड़ेगा। याद करें, लिख लें ये बात और कभी आजमाइएगा। खुले पैसे पर्स में पड़े हैं, दिल खोल के इस्तेमाल करते हैं। चलो खैर है भी बहुत है। जिस दिन गिन लेंगे ना, उस दिन देखिएगा, हाय हाय ये तो 99 है, कभी एक और ना मिल जाए तो 100 का नोट बना के रख लो। ये 999 है तो इसको 1000 करो, और ये 999 बंदे को कब्र तक ले जाते हैं। इसलिए गिन गिन के नहीं रखना, जमा नहीं करना। वो समझता है कि इसका माल हमेशा इसके पास रहेगा, इसने खुद नहीं रहना तो माल कहाँ रहेगा। हरगिज़ नहीं, वो शख्स तो चिकना चूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि क्या है वो चिकना चूर कर देने वाली जगह? नारुल्लाहिल मुकदा, अल्लाह की आग खूब भड़काई हुई। अल्लती तत्तली वल अफईदा, जो दिलों तक पहुंचेगी, वो इन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सतूनों में घिरे हुए होंगे। अल्लाह अकबर, वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ने आग को अपनी आग का नारुल्ला, जैसे बैतुल्ला ने इस तरह नारुल्ला, अल्लाह की आग। तो आप देखिए, दुनिया में अल्लाह का हर काम कितना खूबसूरत और आसन है, तो फिर जहन्नम भी तो बुराई के मामले में आसन ही होगी ना, यानी उससे बुरी चीज़ तो कोई बन ही नहीं सकेगी, अल्लाह ताला ने रखा। अगर आप पीछे से गौर करें ना, सूरह ज़िलज़ाल से बात चल रही है, अल्लाह ताला ने इस्लाम के अकायद और उसके अखलाकी तालीमात को लोगों के जहन नशीन किया। सूरह ज़िलज़ाल में इंसान के पूरे नामा माल को उसके सामने रखने की बात थी, ज़रा बराबर नेकी या बदी दिखेगी। सूरत आदियात में लूट मार और गारत गरी की तरफ इशारा किया गया, जो अरब में फैली हुई थी, और एहसास दिलाया गया कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का गलत इस्तेमाल नाशुक्री है, और मामला यही नहीं ख़त्म होगा, मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी है, तुम्हारी नियतों तक को देखा जाएगा, तुम्हारा रब जानता है। फिर सूरत कारिया में हमने देखा कि क्यामत का नक्शा दिया, और साथ इंसान के अच्छे या बुरे अंजाम का इन्हिसार उसकी नेकियों पर रखा। सूरत तकासुर में मादा परस्ती पे चोट डाली गई कि मरते दम तक दुनिया के फायदे, लज्जतें, ऐश कोश, जो मर्जी कर लो, एक एक चीज वहां रहेगी। सूरत असर में दो टोक तरीके से बता दिया कि इंसान इस दुनिया में नुकसान पे, इसको सेहत और आफियत में बदलना तो करना पड़ेगा। और अब सूरत अल हुमजा, जाहिलियत की सरदारियों का एक नमूना, कि तुम्हें पता कि ये सब कुछ क्यों होगा तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम दुनिया में लोगों का जीना धोबर करते थे। कुत्तों की तरह बोलता है ना इंसान एक दूसरे पे। हदीस में आता है कि ऐसे लोग क़यामत के दिन कुत्तों की शक्ल में पेश किए जाएंगे, जो हम्माज और लम्माज थे। शायद किसी को मेरे मुंह से ये बात सुनकर सख्त लगी हो, तो हालांकि हकीकत जो है कि इस पे हदीस मौजूद है, और कुरान पाक की खूबी देखिए और अल्लाह ताला का मिजाज देखिए, कि जैसा गुनाह होता है ना वैसी सज़ा है। पीछे गीबत के ज़िमन में हमने मुर्दा भाई का गोश्त खाने की बात सुनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अखलाकी खराबियाँ हमारे अंदर से निकाल दें, और लोगों को देखकर हम ऐसे बोलना ना शुरू हो जाए। सूरत फील, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया, और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, जो इनके ऊपर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे? फजा लहुम कस्फ़ मअकूल, फिर इनका हाल ये कर दिया जैसे खाया हुआ भूसो। क्या पैगाम है इस सूरत का? अल्लाह अपने कामों की हिफाजत खुद करता है, अल्लाह अपनी चीज़ों को खुद देखता है, मेरी और आपकी इसको ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से जो भी करते हैं, अपने नसीब से करते हैं। सूरत कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लईलाफ़ी कुरैश, ईलाफ़िहिम रिहलत शिताई वस्सईफ। चूँकि कुरैश मानूस हुए, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस, बस इनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, जिसने इन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। अरबों को बता दिया कि रब बहाज़ल बैत, नोट कर लें इसको, ये नहीं कहा कि इस घर की इबादत करो, बल्कि रब बहाज़ल बैत। क्या मैसेज है कि खाना काबा जाके उस घर को लिपट के रोते हो, तो वहां से आते हो, घर तो उधर रहता है, रब तो तुम्हारे साथ है, यहाँ के नमाज भी नहीं पढ़ते, तो हैरत की बात है ना। तो यहाँ इंसान को बंदगी सिखाई जा रही है कि रब के बंदे बनो, रिचुअल्स के बंदे नहीं बनो। सूरत माउन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। तुमने देखा उस शख्स को जो आखरत की जजा सजा को छुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिसकीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं और मामूली ज़रूरत की चीज़ें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। फिर देखिए कि दुनिया की कसरत की तरफ इशारा है। आखरत को झुठलाने वाला नमाज का चोर। यहाँ नोट कीजिएगा कि जो नमाज पढ़ते ही नहीं उनका क्या हाल होगा। यहाँ तो सुस्तियों की बात है, कोई रकत चुरा ली, वजू सही ना किया, रकत पूरी नहीं, रुकू पूरा नहीं, सजदा पूरा नहीं, लेकिन जो पढ़ते ही नहीं फिर अल्लाह उनका तो तذکرہ भी नहीं करता इस मामले में। और आप देखिए कि दूसरों को बरतने की चीज़ नहीं देते, ये भी बड़ी अजीब बात है। इंसान के पास जितना ज़्यादा होता है ना, उसका दिल उतना ही तंग हो जाता है, घुटन पड़ती है। आप देखिए कि इस्लाम क्या चाहता है, ज़रूरत की चीज़ को इस्तेमाल करो, बग़ैर ज़रूरत की चीज़ को किसी ऐसे बंदे को दे दो जिसको ज़रूरत है। मुझे किसी साथी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो चीज़ मेरे घर में पड़ी हो और 1 साल पड़ी रहे, कभी कभी होता है ना, शायद कभी 1 साल में एक ही बार इस्तेमाल होती होगी, तो कहते हैं कि मैं उसके बारे में ये सोच लेता हूँ कि ये मेरी नहीं किसी और की है, जिसको मेरे से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, और फिर मैं वो चीज़ उसको दे देता हूँ। आप इस असूल पे काम करें। मैं अक्सर लोगों को सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ ये चीज़ इसने आखिरी बार कब इस्तेमाल की होगी, और बाज़ तो हालात जो होते हैं पता भी नहीं होता घर में है क्या, तो बाज़ कहते नहीं ये घर में रखी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे मैनेज करने वाले लोग मैंने देखे हैं घरों को, कहते नहीं ये वो कभी ईद पे निकालते हैं, बकरीद के बकरीद, कोई कहता है अच्छा ये कभी पिकनिक पे जाते हैं ना, फिर ये टोकरी निकालते हैं। तो मैं सोचती हूँ सिर्फ फंसा वायल एक दफ़ा साल में, और हर ईद पे कोई नहीं निकलती, हर पिकनिक पे याद भी कोई नहीं आती, टोकरी पहले ही आगे इतना कुछ होता है। मैं कहती हूँ बड़ा हौसला है, 1 दिन के लिए आपने ये चीज़ खरीदी है, उस दिन बंदा चलो मैं ले जाए, इस टोकरी में ज़रूर डाल के लेके जाना है, और आप पूरा साल इसकी हिफाजत करते रहे। तो आज अपनी ज़िंदगी में एक नियत करें, हर वो चीज़ जो मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करनी है अपने हाथों में रखें, कम इस्तेमाल करने वाली चीज़ ज़रा पीछे रख दें, और जो कभी कभी होती है ना उसको किसी ऐसी जगह पहुंचा दें जहां वो आपका सदका जारिया बन जाए। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून होगा। एक ही चीज़ कई दफ़ा इस्तेमाल हो सकती है, जितनी ज़्यादा चीज़ें, घर में अगर 10 लोग हैं, मिसाल है, होते तो कोई नहीं आजकल, तो बस 11 ग्लास लगा लें, 12वां ना लगाएं, वही धोएं वही पिएं उसी में, वरना अगर आपने हर बंदे के 4 ग्लास रखें तो आपके खड़े होने की जगह भी नहीं रहेगी। अगली सूरत में अल्लाह सुबहाना ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में एक बड़ा खूबसूरत पैगाम देते हैं। सूरत अल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए नबी, हमने आपको कौसर अता फरमाई, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। अल्लाह के नबी का नाम बाकी रहेगा काम के साथ। नोट कीजिएगा, जब आपके बच्चे दुनिया से जाते रहे एक बाय एक, तो लोगों ने कहा शायद इस शख्स का नाम कट जाएगा, जैसे आज हम में से किसी की औलाद ना हो ना, तो बड़े लोग कहते हैं हाँ इसकी नस्ल आगे नहीं चलेगी। हालांकि मैंने लोगों की नस्लों को डूबते देखा है औलाद की वजह से, लोग कहते हैं इसके होने से तो ना होती औलाद तो बेहतर थी। अल्लाह कहते लोगों के नाम तो बच्चों के साथ चलते हैं, आपका नाम कौसर के साथ चलेगा, जिसकी आखिरी जड़ जन्नत में है। काम करते जाइए, अल्लाह आपका मिशन, आपका अजरुन गैरु ममनून जारी रखेगा। और अगर आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी रखी तो याद रखिए कि फिर आपको चंद सालों के बाद कोई याद नहीं करेगा। बच्चों को भी सब्र आ जाता है, वो भी यही देख रहे होते हैं कब जाएं तो हमें भी कुछ मिले इनसे। सूरत काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد। कह दो ये काफिरो, अंदाज नोट कीजिएगा, पहले सूरत अल मोमिनून गुजरी 18वें पारे के शुरू में, 18th पारा, फिर 28वें पारे में सूरत मुनाफिकून, और अब सूरत अल काफिरून। कह दो कि काफिरों में इनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ ان کی عبادت کرنے والا ہوں میں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ کیا میسج ہے اس صورت کا کہ اسیمیلیشن نہیں ہے، نو کمپرومائز، سودے بازیاں نہیں، مانو تو پورا مانو، جھٹلاؤ تو پورا جھٹلاؤ۔ لیکن انسان کے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو کھل کے دنیا لے، پھر مجاہد، پھر دنیا بنے، پھر موج کرے، مستی کرے، عیش کرے، پھر کیوں نفس کو ترسائے، خوب جم کے دنیا لیجیے، جم کے گناہ کیجیے، جم کے غلطیاں کریں، اور نہیں تو پھر پورے دل سے مجاہد فی سبیل اللہ بن جائیں۔ یہ جو بیچ کی ڈوری ہے نا، یہی یہ نہیں صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے اپنے عقائد اور اپنے اعمال پہ پختہ کر دے کہ ہم دوسری کسی سوچ پہ نظر بھی نہ ڈال سکیں۔ سورۃ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی آپ دیکھ لوگے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کرو کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اسے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آخری سورت آئی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، پوری سورت حجت الوداع کے موقع پر منا کے مقام پہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور وہ مشہور خطبہ دیا جس کو حجت الوداع کا خطبہ کہتے ہیں۔ کیا میسج ہے کہ شروع کے دن ایک آتا ہے تو اللہ اکبر، عمر آئے تو اللہ اکبر، اور ایک وقت آئے کہ قبیلوں کے قبیلے، گھروں کے گھر، فیملیز کی فیملیز اسلام میں آئیں۔ اللہ آج بھی ہمیں اسلام کی یہ بہاریں دکھائے۔ سورۃ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترتیب بھی دیکھیے گا، کہا فتح کی بات بتائی ہے، کامیابیوں کے، اور ساتھ ہی بس سب سے بڑے دشمن کی بات بتا دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلے مارتی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، چچا اور ہمسایا لیکن پکا دشمن بن گیا۔ آپ کی پیدائش کی خبر پہ صویبہ نام کی لونڈی کو آزاد کرنے والا، آپ کے نبی بنائے جانے پہ بد دعائیں دیتا دیکھتا ہے، یہ فرق پڑتا ہے سچے دین پہ آنے سے، کیونکہ ربیع الاول میں محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے، اور رمضان کی ان راتوں میں اقرأ باسم ربک اللذی پہ محمد اور رسول اللہ میں ڈھلے، تو دوستیاں دشمنیوں میں اور دشمنیاں دوستیوں میں ڈھل جاتی ہیں جب بھی دین آئے گا آپ کی زندگی میں۔ واحد شخص ہے کہ جس کا اللہ نے نام لے کے رسوا کیا، انشاءاللہ آپ کو جلدی سنوائیں گے سیرہ کے سیشنز، تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کو اس شخص نے کتنے دکھ دیے۔ سورۃ اخلاص، اللہ ہمیں اخلاص دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ہے، یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا نام۔ اخلاص اس صورت کا نام ہی نہیں، اس کا مضمون بھی اخلاص ہے، اور اخلاص آ ہی نہیں سکتا جب تک خالص توحید نہ آ جائے۔ کئی جگہ قرآن پاک میں توحید کی بات آئی، لیکن یہاں تو ایک اچھوتا انداز ہے، ہر طرح کی چیزوں سے بے نیاز کر دیا گیا، وہ ایک ہے، احد ہے، اور احد وہ ہوتا ہے جس کو اور زیادہ تقسیم نہ کیا جا سکے۔ کرسچینٹی کے سارے نظریات کا رد ہے اسے ایک صورت میں۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں اور والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، आप अगर इन दोनों सूरतों को साथ ही पढ़ें तो आपको फर्क दिखेगा। अभी पहली चीज में देख लें, सूरत फलक में बेरा बिन नास कहकर यानी एक दफा अल्लाह की एक सिफत के साथ बात हुई, और देखिए मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्री नफ्फासाति फिल उक़द व मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, चार चीजों से पना ली गई। इस फर्क को नोट कर लें, फिर अगली सूरत पढ़ते हैं तो आपको मैं दोनों का तकाबुल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी माबूद की, इस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, ख्वा वो जिन्नों में से हों या इंसानों में से। यहाँ देखिए बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, यहाँ सूरत से बिल्कुल ऑपोजिट। वहाँ सिर्फ बिरब्बिल फलक एक दफ़ा रब की एक सिफत का जिक्र हुआ और चार चीज़ों से पनाह मांगी। यहाँ अल्लाह ताला की तीन सिफात की कसम खाई गई, बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, यानी इनकी पनाह में लेकर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से पनाह, मिन शर्रुल वसवासिल खन्नास। क्या पता चला कि सूरत अल फलक में बाहर की चीज़ों के शर से पनाह मांगी जो हमें इस मादी दुनिया में मिलती हैं, और सूरत अन्नास में अंदर के फितने यानी नफ्स की शरारतों से पनाह मांगी गई। ये दो ही चीज़ें जो इंसान को तबाह करती हैं, और कुरान पाक की तकमील के मौके पे हम सबको बता दिया कि अंदर और बाहर के फितनों से बचने का एक इलाज है कि रब की पनाह में आ जाओ। यहाँ तीन सिफात के तذکرے के बाद नफ्स की शरारतों की बात है, इससे पता चलता है कि अंदर के फितनों से निपटना ज़्यादा मुश्किल है, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ है क्योंकि इंसान बार बार भूल जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे इस सफ़र को कबूल करें, कमी बेशियों को माफ़ करें, गलतियों की इसलाह फरमाए, आइंदा हमें इससे बेहतर और अहसन तरीके पे पढ़ने और समझने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आनिस वख्शति फी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम, वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجله لي حجة يا رب العالمين। अल्लाह ताला हमारी कमियों बेशियों को माफ़ करे, और हमारे माँ बाप, हमारे उस्तादों, और हर उस इंसान जिसमें सबसे बढ़ के हमारे घर वाले, हमारे शौहर, हमारे ससुराल, हमारी औलादें, अल्लाह ताला उनको भी हिस्सेदार बनाए और हमें इस काम को आसान तरीके पे करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें नाशुक्रपन से बचाए, या अल्लाह तू हमें रुसवा ना करना, दुनिया के साथ आखरत भी तू नहीं देनी है, दोनों के बीच में हमें बैलेंस रखने वाला बना दे, इससे आसान दर्जे पे पढ़ें, खूबसूरत तरीके से पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ करें आप भी मुझे माफ़ करें और अल्लाह भी माफ़ करें कि जो गलतियाँ, ख़ताएँ, कमी बेशी होती है। और जज़ाकल्लाह खैर व अहसनु जज़ा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।